ओके, लेट्स अनपैक दिस। यानी अगर सामाजिक दबाव, अपमान और मुश्किलों को एक सजा के रूप में देखने के बजाय एक ओलंपिक लेवल की कड़ी ट्रेनिंग की तरह देखा जाए, तो नजरिया कैसा होगा?
एक बिल्कुल नया और सच्चा नजरिया होगा।
बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उस अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं जो डॉक्टर डेविड ए. डिसिल्वा ने हिब्रियस चैप्टर 12 पर किया है, और उनके इस अध्ययन का जो निष्कर्ष है वो सिटीजन इन ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण में नागरिक पर आधारित है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक प्राचीन लेखक ने सामाजिक बहिष्कार और जिंदगी के कष्टों को ईश्वरीय सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक अनंत शहर के नागरिक बनने की ट्रेनिंग के रूप में पेश किया।
और इस विश्लेषण की शुरुआत में ही एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ जिस कष्ट या सफरिंग की बात हो रही है ना, वो नहीं है जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं।
यानी हम फिजिकल बीमारियों की बात नहीं कर रहे।
एग्जैक्टली। जब स्रोतों में कष्टों का जिक्र आता है तो लेखक किसी बीमारी, आर्थिक तंगी या रोजमर्रा की आम समस्याओं की बात नहीं कर रहा है। ये कष्ट मूल रूप से सामाजिक बहिष्कार है। देखिए, प्राचीन मेडिटेरियन समाज में इज्जत और सम्मान ही सब कुछ होता था।
सही कहा, ऑनर एंड शेम कल्चर।
हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति अपने विश्वास पर अडिग है और बाकी समाज उससे सहमत नहीं है, तो उसे मूल सामाजिक ढांचे से पूरी तरह काट दिया जाता था। ये एक तरह का आर्थिक और सामाजिक बॉयकॉट था जो उन लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था।
और यही मुद्दा इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है, क्योंकि सामाजिक दबाव और बॉयकॉट की साइकोलॉजी को समझाने के लिए लेखक सीधे खेल की भाषा का सहारा लेता है। मतलब पिछले हिस्सों में एक आम दौड़ या फुट रेस की बात हुई थी जहां सहन शक्ति की जरूरत होती है।
हाँ, वहां इंड्योरेंस पर फोकस था,
लेकिन यहां आकर भाषा अचानक से बहुत आक्रामक हो जाती है। अब बात सिर्फ दौड़ने की नहीं रही, बल्कि एक मुक्केबाजी या पैनक्रेटियम की हो रही है।
हो, पैनक्रेटियम, वो बहुत खतरनाक होता था।
बिल्कुल। पैनक्रेटियम उस दौर का एक ऐसा प्राचीन मुकाबला था जहां आमने सामने की कड़ी टक्कर होती थी, और सबसे बड़ी बात, इसमें लगभग कोई नियम नहीं थे। आंख नोचने या हड्डियां तोड़ने तक की छूट होती थी। यहां लेखक श्रोताओं पर एक सीधा वार करता है और कहता है कि तुमने अभी तक खून बहने की हद तक संघर्ष नहीं किया है।
ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है,
है ना? ये तो बिल्कुल उन्हें शर्मिंदा करने जैसा लगता है, जैसे कोई कह रहा हो कि ये जो सामाजिक बॉयकॉट झेलना पड़ रहा है, ये उस ईश्वरीय मसीह के कष्टों के आगे कुछ भी नहीं है।
What's fascinating here is कि लेखक का ये तरीका बहुत ही सोचे समझे ढंग से इस्तेमाल किया गया है। वो इन लोगों को सिर्फ शर्मिंदा नहीं कर रहा, बल्कि उनके कष्टों को एक कॉस्मिक बॉक्सिंग मैच का रूप दे रहा है।
कॉस्मिक बॉक्सिंग मैच, वाओ।
हाँ, वो याद दिला रहा है कि ये मुकाबला आम लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पाप और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई थककर हार मान लेता है और उस समाज में वापस घुलना मिलना चाहता है जो उनका विरोध कर रहा है, तो इसका मनोवैज्ञानिक मतलब ये है कि उसने उस मुक्केबाजी के मैच में पाप के सामने घुटने टेक दिए हैं।
यानी हार मान ली।
बिल्कुल। और इस हार से बचाने के लिए ही लेखक एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सामने लाता है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है, और वो है पेडेया।
पेडेया यानी एक तरह का कृपालु लेकिन सख्त प्रशिक्षण। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही स्ट्रिक्ट जिम कोच की बात हो रही हो। एक ऐसा कोच जो अपने सबसे होनहार एथलीट को लिमिट के पार पुश करता है, उसे दर्द देता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उस एथलीट से नफरत करता है,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसमें पोटेंशियल देखता है।
एग्जैक्टली। वो जानता है कि उसके अंदर एक चैंपियन बनने की क्षमता है, लेकिन यहां एक अजीब सी कश्मकश भी दिखती है मुझे।
कैसी कश्मकश?
अगर उन्हें पहले से ही सामाजिक रूप से इतना पीटा जा रहा है, उनका बॉयकॉट हो रहा है, तो इस स्ट्रिक्ट कोचिंग की थ्योरी उन्हें और ज्यादा तोड़ नहीं देगी।
यही तो इस प्राचीन पथ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं समझाती हूँ कैसे। इस टेक्स्ट में ग्रीक शब्द पेडेया का 7 बार इस्तेमाल हुआ है। लेखक ने यहाँ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 की पंक्तियों का हवाला दिया है, लेकिन एक चमत्कारी और बहुत गहलाई वाले बदलाव के साथ।
वो बदलाव क्या था?
अगर हम मूल हिब्रू टेक्स्ट को देखें तो वहां सजा या पनिशमेंट की भावना पर ज्यादा जोर है, लेकिन लेखक ने यहाँ हिब्रू टेक्स्ट के बजाय सेप्टुजेंट का उपयोग किया है,
यानी ग्रीक अनुवाद का।
हाँ, इस लिंग्विस्टिक शिफ्ट से पूरा मनोविज्ञान ही बदल जाता है। ग्रीक अनुवाद में सजा की भावना कम हो जाती है और इसे गोद लेने यानी अडॉप्शन और सवारने वाली शिक्षा के रूप में दिखाया जाता है।
फॉर्मेटिव डिसिप्लिन।
ईश्वर उन्हें उनकी गलतियों के लिए पीट नहीं रहा है
बल्कि उन्हें अपने असली बच्चों के रूप में अपना रहा है।
रुकिए, ये तो एक बहुत ही बड़ा न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल शिफ्ट है।
सही पकड़ा, पूरा माइंडसेट ही बदल गया।
यानी जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि समाज उन्हें बहिष्कृत कर रहा है क्योंकि उनसे कोई भारी गलती हुई है या ईश्वर उनसे नाराज है, उन्हें अचानक ये एहसास दिलाया जाता है कि उनका दर्द दरअसल उनके VIP स्टेटस की निशानी है। बिल्कुल, सामाजिक शर्मिंदगी को ईश्वर के परिवार में अपनाए जाने के सम्मान में बदल दिया गया। जब किसी को ये समझ आ जाए कि उसके कष्ट एक मकसद का हिस्सा है तो उस दर्द झेलने की क्षमता दुगनी हो जाती है, और ये विचार उस दौर के दार्शनिक भी खुले तौर पर मानते थे।
जैसे कि सेनेका?
हाँ, सेनेका जो एक प्रसिद्ध लैटिन फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इसी मनोविज्ञान पर लिखा था। उनका मानना था कि ईश्वर अपने सबसे प्रिय लोगों को कठिन परीक्षा में डालता है ताकि वो और मजबूत बन सकें। और इस आर्ग्यूमेंट को और वजन देने के लिए सेनेका ने स्पार्टन पिताओं का उदाहरण दिया।
ओ वाओ, स्पार्टन्स, यानी वो योद्धा जो अपने बच्चों के प्रति बेहद सख्त माने जाते थे। लेकिन उनका यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कनेक्शन है?
कनेक्शन उनके डिसिप्लिन के पीछे छिपे इरादे से है। देखिए, स्पार्टन लोग अपने बच्चों को पब्लिक में कोड़े मारते थे, लेकिन ये क्रिया प्यूनिटिव यानी दंडात्मक नहीं थी बल्कि प्रोबेटिव यानी परीक्षात्मक थी।
अच्छा, यानी टेस्टिंग के लिए।
सही कहा, वो उन्हें किसी गलती की सजा नहीं दे रहे थे बल्कि उनकी हिम्मत बढ़ाने और उन्हें एक बेहतर योद्धा बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। एक स्पार्टन पिता सिर्फ उसी बच्चे को इस कड़ी परीक्षा से गुजारता था जिसे वो अपना सच्चा और वैध बच्चा मानता था,
यानी लेजिटिमेट चाइल्ड।
हाँ, जो बच्चे नाजायज या गैर कानूनी थे उन्हें इस ट्रेनिंग के लायक समझा ही नहीं जाता था। ठीक इसी तरह टेक्स्ट सिखाता है कि ईश्वरीय कष्ट झेलना सच्चे बच्चों की निशानी है, न कि पिछड़े हुए लोगों की।
ये सच में नजरिए को पूरी तरह पलट देने वाला उदाहरण है। मतलब जिंदगी की मुश्किलों का मतलब ये नहीं कि कोई लावारिस है, बल्कि ये है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे एक पुरानी कहावत है कि शिक्षा की जड़ कड़वी होती है पर इसका फल मीठा होता है।
और यहाँ इस टेक्स्ट में उस मीठे फल को कार्पोस यानी धर्मी होने का फल कहा गया है। एक ऐसी आदत जहाँ एक व्यक्ति धीरे धीरे हमेशा सही चुनाव करना सीख जाता है।
लेकिन अगर ये ट्रेनिंग इतनी ही शानदार और मकसद भरी है तो इस मुक्केबाजी के मैच में सबसे बड़ा खतरा क्या है? कोई इंसान आखिर इस कॉस्मिक ट्रेनिंग में फेल कैसे हो सकता है?
खतरा आता है थकान से।
थकान?
हाँ, जब कोई लगातार सामाजिक दबाव झेलता है ना, तो एक वक्त के बाद उसके अंदर हिम्मत टूटने लगती है। लेखक ने यहाँ आइजाया चैप्टर 35 का हवाला देते हुए कहा है कि थके हुए हाथों और कमजोर घुटनों को मजबूत करो। खतरा ये है कि इस आत्मिक दौड़ में किसी की हिम्मत न टूट जाए
या कोई पीछे न छूट जाए।
एग्जैक्टली। और इससे भी बड़ा खतरा है उनके अंदर एक कड़वी जड़ यानी रूट ऑफ बिटरनेस पैदा होने का, जिसका जिक्र ड्यूटरोनमी 29 में मिलता है। ये कड़वी जड़ एक ऐसी मनोस्थिति है जो ना सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समुदाय को भ्रष्ट कर सकती है,
एक बीमारी की तरह फैल सकती है।
बिल्कुल। और इसी थकान और कड़वी जड़ के खतरे को समझाने के लिए एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई है एसाओ की कहानी के जरिए।
Here's where it gets really interesting. एसाओ की कहानी। हम जानते हैं कि एसाओ ने अपनी भूख मिटाने के लिए यानी बस एक वक्त के लेंटल सूप के लिए अपना पहलौटे का अधिकार बेच दिया था। मतलब एक कटोरी मसूर की दाल के बदले अपनी पूरी विरासत दाव पर लगा दी।
और उस दौर में बर्थराइट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में पहलौटे का अधिकार सिर्फ एक औपचारिक टाइटल नहीं था,
वो पूरी फैमिली का लीडरशिप था।
हाँ, आर्थिक सुरक्षा, जमीन का हक और पूरे परिवार का नेतृत्व करने का अधिकार। एसाओ ने एक पल की भूख और थकान के आगे घुटने टेक दिए। लेखक ने यहाँ बहुत ही चतुराई से बर्थराइट और आशीर्वाद को मिला दिया है, जबकि जेनेसिस की मूल कहानी में ये दोनों घटनाएं थोड़े अलग वक्त पर हुई थीं।
इन्हें मिला क्यों दिया गया यहाँ?
इन्हें यहाँ एक साथ जोड़ने का मकसद ये दिखाना है कि जो मूल्यवान चीज एक बार हल्के में लेके फेंक दी गई उसे वापस पाने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, चाहे उसके बाद एसाओ ने आंसुओं के साथ ही क्यों ना उसे वापस मांगा हो। सेकंड चांसेस नहीं थे वहाँ।
लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा विरोध करना चाहूंगा।
कीजिए।
क्या इस टेक्स्ट का ये रवैया थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं लगता? मतलब अगर कोई इंसान लगातार सामाजिक बॉयकॉट का शिकार हो रहा है, उसकी इज्जत छीनी जा रही है, तो उसका ब्लेंड इन होना या भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करना दरअसल एक सर्वाइवल टैक्टिक ही तो है। एक आम इंसान बस शांति से जीना चाहता है।
वो समझ में आता है।
तो उस चुपचाप जीने की इच्छा को एक कटोरी सूप के बदले अपना अस्तित्व बेचना कह देना क्या कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं है?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। भीड़ में ब्लेंड इन होना बिल्कुल आसान और सुरक्षित लगता है, और यही वजह है कि लेखक इतनी हार्श भाषा का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि आसान रास्ता चुनना मनुष्य की फितरत है,
ह्यूमन नेचर है।
एग्जैक्टली। डॉक्टर डिसिल्वा ने इस मनोस्थिति को डोमेस्टिकेटेड क्रिश्चियनिटी का नाम दिया है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई अपने विश्वास या मूल्यों को इतना निजी, इतना आसान और बेअसर बना लेता है कि वो उसकी रोजमर्रा की आसान जिंदगी में कोई दखल ही ना दे।
यानी अपने सिद्धांतों को सिर्फ तब तक मानना जब तक उनकी वजह से कोई नुकसान ना हो रहा हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से।
ठीक कहा। और यही वो गलती है जिसके खिलाफ लेखक आवाज उठा रहा है। अगर कोई सामाजिक दबाव या सुविधा की खातिर अपने गहरे मूल्यों से समझौता कर लेता है, तो ईश्वरीय नजरिए से वो बिल्कुल ईसाव जैसा ही कर रहा है।
वो अपनी लॉन्ग टर्म लेगेसी बेच रहा है।
हाँ, वो अनंत काल की विरासत को एक पल की सामाजिक शांति उस बाउल ऑफ सूप के लिए बेच रहा है। और लेखक कहता है कि जब अनमोल चीज फेंक दी जाती है तो बाद में पछतावे के आंसू भी उस डिसीजन को पलट नहीं सकते। दौड़ाया जा सकता। और इसलिए स्रोतों के मुताबिक लेखक अगले हिस्से में ध्यान बताने के बजाय श्रोताओं की नजरें उनकी मंजिल पर केंद्रित करता है।
वो मंजिल कैसे दिखाता है?
वो पुराने डर और नए उत्सव के बीच का अंतर दिखाने के लिए दो पहाड़ों का एक बहुत ही विजुअल और सिनेमैटिक कंपैरिजन करता है, माउंट साइनाई और माउंट ज़ायन।
इसको अगर हम एक आधुनिक और प्रैक्टिकल नजरिए से समझें तो माउंट साइनाई एक हाई सिक्योरिटी टॉप सीक्रेट फैसिलिटी की तरह है, जहां चारों तरफ अंधेरा है, डेंजर के साइन लगे हैं, और जहां एक गलत कदम का मतलब सीधा मौत है।
बिल्कुल सही तुलना की है। माउंट सिनाई का प्रतीक इस टेक्स्ट में बिल्कुल वैसा ही डरावना और भौतिक पेश किया गया है। ये वही जगह थी जहां पुराना नियम यानी ओल्ड कवेनेंट दिया गया था। स्रोतों में इस पहाड़ के सेंसरी डिटेल्स बहुत भयावह हैं।
क्या थे वो डिटेल्स?
वहां डर था, अंधेरा था और एक भयानक तूफान था। ईश्वर की पवित्रता का आतंक इतना ज्यादा था कि नियम बनाया गया था कि अगर कोई आम इंसान तो दूर, अगर कोई जानवर भी गलती से उस पहाड़ को छू ले तो उसे पत्थर मारकर या तीर चलाकर मार दिया जाएगा।
वेट, जानवर को भी? मतलब उस पहाड़ को छूने की गलती करने पर एक जानवर तक को नहीं बख्शा जाता था?
हाँ, उस जगह की सिक्योरिटी और डर का आलम ये था कि महान नेता मोसेस खुद भी इस नजारे को देखकर डर से कांप रहे थे।
वाओ, मोसेस खुद डर रहे थे।
बिल्कुल। उस पहाड़ के पास जाना आम लोगों के लिए सख्त मना था। ये पुराने तौर तरीकों, कानून और मौत के डर का प्रतीक था।
और इस डरावने डर भरे माहौल के ठीक विपरीत लेखक एक दूसरा पहाड़ खड़ा करता है, माउंट ज़ायन। ये तो उस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के बाहर से निकलकर अचानक एक ऐसे शानदार वीआईपी उत्सव में एंट्री लेने जैसा है जहां दरवाजे पर पहले से ही गेस्ट लिस्ट में नाम चमक रहा हो।
ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ रहा होगा ना उस वक्त। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये रेटोरिकल टूल बहुत ही शक्तिशाली है। लेखक समझा रहा है कि मंजिल माउंट साइनाई का डर नहीं है।
तो मंजिल क्या है?
मंजिल माउंट ज़ायन है, जो नए नियम और एक स्वर्गीय शहर का प्रतीक है। यहाँ का माहौल डर का नहीं बल्कि एक उत्सव का है। यहाँ हजारों स्वर्गदूत जश्न मना रहे हैं।
स्वर्गीय नागरिकों का एक रोस्टर।
एग्जैक्टली। यहाँ उन स्वर्गीय नागरिकों की लिस्ट मौजूद है जिसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज हैं जो इस दुनिया में बहिष्कृत थे। और इस नजारे की सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ मौजूद खून का जिक्र।
हाँ, खून वाला पॉइंट। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। यहाँ जीसस के खून की तुलना एबिल यानी हाबिल के खून से की गई है और कहा गया है कि ये एबिल के खून से बेहतर बातें बोलता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि इन दोनों के खून को कंपेयर करने का लॉजिक क्या है? एबिल का यहाँ क्या काम?
इसके पीछे एक बहुत ही गहरा थियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लॉजिक है। देखिए, जेनेसिस की कहानी में जब केन ने अपने भाई एबिल का खून किया था तो ईश्वर ने कहा था कि एबिल का खून जमीन से इंसाफ और बदले की आवाज लगा रहा है।
यानी एबल का खून डर और बदले का प्रतीक था।
हाँ, लेकिन माउंट ज़ायन पर जिस खून का जिक्र है यानी जीसस का खून, वो बदले की मांग नहीं करता। वो माफी, कृपा और परिवार में वापस अपनाए जाने की आवाज उठाता है।
वाओ।
लेखक ये दर्शाना चाहता है कि जहां पहले सिर्फ डर और इंसाफ की कड़वी पुकार थी, वहां अब माफी और उत्सव का संगीत है।
ये सच में दिमाग को हिला देने वाला कॉन्ट्रास्ट है। लेखक एक तरह से यही कह रहा है कि जब तुम्हारे पास इतनी शानदार VIP एक्सेस और इतना बड़ा उत्सव पहले से मौजूद है, तो तुम थोड़े से सामाजिक दबाव या लोगों के तानों के कारण वापस मुड़ने की सोच भी कैसे सकते हो?
इतने बड़े जश्न को छोड़कर कोई वापस अंधेरे में क्यों जाना चाहेगा? सही बात है।
लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ सेट हो गया है और उत्सव का माहौल बन गया है, लेखक अचानक से एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी दे देता है। एक ऐसी चेतावनी जो माउंट ज़ायन के पूरे VIP उत्सव वाले वाइब को थोड़ा अजीब बना देती है।
हाँ, और वो चेतावनी आती है एक आने वाले कॉस्मिक अर्थक्वेक, यानी एक महान ब्रह्मांडीय कंपन के रूप में। लेखक यहाँ हैगाई chapter 2 verse 6 नामक एक प्राचीन भविष्यवाणी का हवाला देता है,
जिसमें आकाश और पृथ्वी हिलने की बात है।
बिल्कुल, वो कहता है कि ईश्वर न सिर्फ पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिलाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक विशेष ग्रीक फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, एतिहापाक्स, जिसका मतलब होता है ओनली वंस मोर, यानी सिर्फ एक बार और।
रुकिए, सिर्फ एक बार और? इसका मतलब ये कोई आम भूकंप नहीं है, ये एक फाइनल कॉस्मिक रीसेट की बात हो रही है। लेकिन इस कॉस्मिक भूकंप का आखिर मकसद क्या बताया गया है स्रोतों में?
इसका मकसद बहुत स्पष्ट है। इस ब्रह्मांडीय कंपन का मतलब है उन सभी भौतिक और दुनिया की चीजों का पूरी तरह मिट जाना जिन्हें बनाया गया है। हर वो चीज जो शेकेबल है, यानी हिलने वाली है।
जैसे कि?
जैसे सामाजिक रुतबा हो, दौलत हो, या वो समाज जो इन लोगों का बहिष्कार कर रहा था, वो सब गिर जाएगा। और इस सब के बाद सिर्फ और सिर्फ वही बचेगा जो अनंत है और अनशेकेबल है, जिसे हिलाया ना जा सके, यानी ईश्वर का अनंत राज्य।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मैं सच में यहाँ थोड़ा उलझ गया हूँ। इस विश्लेषण की स्थिति यहाँ थोड़ी विरोधाभासी लगने लगती है मुझे।
कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों लग रही है?
देखिए, अगर मंजिल माउंट ज़ायन का एक खुशनुमा VIP उत्सव है, जहाँ सब कुछ इतना वेलकमिंग है, माफी है, तो एंड में ईश्वर को एक कंज्यूमिंग फायर या भस्म करने वाली आग बोलकर इतना डरावना क्यों बना दिया गया? क्या ये उत्सव वाले माहौल के ठीक ऑपोजिट नहीं है? एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ भस्म करने वाली आग?
दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी सवाल में इस पूरे टेक्स्ट का सबसे बड़ा सबक छिपा है। दरअसल आधुनिक सोच में लोग मानते हैं कि मुक्ति एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड उपहार है,
कि एक बार मिल गया तो बस फ्री है हम।
हाँ, कि एक बार उपहार मिल गया तो कोई अपनी मर्जी से जैसे चाहे जिए। लेकिन इस प्राचीन लेखक के अनुसार ये एक निरंतर डांस है ईश्वर की अनंत कृपा और इंसान की वफादारी के बीच। भस्म करने वाली आग का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि लोग वापस डर के साय में जीने लगे, बल्कि ये एक कड़ी याददानी है,
एक रिमाइंडर।
बिल्कुल, ये बताता है कि ईश्वर कोई खिलौना नहीं है जिसे अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। जब किसी को इतना अनमोल और अनशेकेबल उपहार मिला है, तो उस उपहार को हल्के में लेना, ठीक वैसे ही जैसे एसाव ने अपने पहलौते के अधिकार को हल्के में लिया था, बहुत भारी पड़ सकता है।
यानी VIP एंट्री मिलने का मतलब ये नहीं कि उस जगह का सम्मान ना किया जाए, और शायद इसी सम्मान और रेवरेंस को टेक्स्ट में एक खास शब्द से दर्शाया गया है, और वो है कृतज्ञता।
सही पकड़ा। स्रोतों में इसे ग्रीक शब्द खरीस या चैरेन कहा गया है। यहाँ कृतज्ञता सिर्फ खाना खाने के बाद एक औपचारिक थैंक यू बोलने जैसा नहीं है, ये एक बेहद गहरी आत्मिक प्रतिक्रिया है,
एक डीप स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स।
हाँ, जब कोई एहसास करता है कि उसने एक अनशेकेबल राज्य प्राप्त किया है, तो उसकी पूरी जिंदगी एक आदर और भय, यानी रेवरेंस एंड ऑ से भर जाती है। ये कृतज्ञता एक ऐसी सेवा बन जाती है जहां इंसान कष्ट झेलने के बावजूद वापस मुड़ने का विकल्प हमेशा के लिए छोड़ देता है।
तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटा जाए तो ये क्लियर होता है कि ये प्राचीन पद दरअसल जिंदगी जीने का एक नया लेंस दे रहा है।
सामाजिक कष्टों और विरोध को एक बेवजह का दुख नहीं, बल्कि ईश्वरीय ट्रेनिंग की तरह देखना जो अंदर से मजबूत बनाती है।
पैदया। एग्जैक्टली। थकान और आसान रास्ते की तलाश में ईसाओ जैसी परमानेंटली नुकसानदायक गलती करने से बचना, डर और अंधेरे वाले माउंट साइनाई की जगह उत्सव और अनंत शांति वाले माउंट ज़ायन को अपनी मंजिल मानना, और सबसे बढ़कर एक ऐसे अनंत राज्य का हिस्सा बनने पर अपना जीवन एक गहरी कृतज्ञता और वफादारी के साथ बिताना।
और मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूंगी कि ये नजरिया किसी भी इंसान को उसके आसपास के सामाजिक दबाव या लोगों के विरोध से ऊपर उठने की ताकत देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि उसके कष्ट उसकी हार का प्रतीक नहीं बल्कि एक महान और अनंत लक्ष्य के लिए की जा रही तैयारी का हिस्सा है। वो बस एक सिटीजन इन ट्रेनिंग है।
सिटीजन इन ट्रेनिंग, सही बात है। कहानी के इस मुकाम पर पहुंचकर एक अजीब सा लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल दिमाग में गूंजने लगता है। अगर सच में आज के वक्त में एक कॉस्मिक अर्थक्वेक आ जाए, एक ऐसा ब्रह्मांडीय कंपन जहां दुनिया की हर वो चीज जो शेकेबल है, जैसे बैंक बैलेंस, सामाजिक रुतबा, करियर या लोगों का अप्रूवल, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाए, तो आखिर में बचेगा क्या? क्या सच में किसी के पास कुछ ऐसा बचेगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता?
ये सच में सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, और यही वो सवाल है जो इस प्राचीन टेक्स्ट की गूंज को आज की इस आधुनिक जिंदगी में भी पूरी तरह से जिंदा और बेचैन करने वाला बनाए रखता है।